स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 22 अप्रैल और दिन शुक्रवार। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मिले झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में मोदी सरकार।
केंद्र सरकार जरूर सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, क्योंकि न्याय की अंतिम श्रेणी और न्याय का सर्वोच्च मंदिर उच्चतम न्यायालय है, उससे ऊपर कोई नहीं है।
ओबामा ने कहा सीरिया के राजनीतिक समाधान के लिए सभी ताकतें साथ आएं। पाकिस्तान में सेना के 11 वरिष्ठ अधिकारी बर्खास्त। सूखा भारत सीरीज में आज बात खनन के कारोबार की।
इतना स्टोन हो गया यहाँ कि चारों तरफ उसके मारे लोग बीमार पड़ रही हैं, सारे रोड ध्वस्त हो गए, धूल की धूल, धंधा इतना होता है कि दिन रात आदमी परेशान, नींद नहीं ले पाता।
लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाकर हरीश रावत की सरकार को बहाल कर दिया है। अब 29 अप्रैल को रावत को सदन में बहुमत साबित करना है। इस मामले में केंद्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के बने रहने को अपना समर्थन दिया है। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन की सदस्यता को लेकर जून में जनमत संग्रह होना है। डेली टेलीग्राफ अखबार के साथ बातचीत में ओबामा ने कहा कि अगर ब्रिटेन ईयू छोड़ता है तो वो चरमपंथ, शरणार्थी संकट और आर्थिक समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं रहेगा। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि अगले हफ्ते शांति के लिए बातचीत जारी रहेगी। स्टेफान दे मिस्तूरा ने सीरिया के मुख्य विपक्षी दलों से बातचीत से बाहर होने को कूटनीतिक चाल बताया। विपक्ष ने सरकारी हवाई हमलों के विरोध में बातचीत से जल्द हटने का फैसला किया था। स्विस टेलीविजन को एक साक्षात्कार में मिस्तूरा ने सभी पक्षों से मिलकर काम करने को कहा।
On peut pas laisser tomber ça. Il faut renouveler les cessez-feu. Il faut accélérer.
हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। हमें संघर्ष विराम को फिर लागू करना होगा, हमें मानवीय मदद को बढ़ाना होगा और सभी साथी देशों से एक साथ काम करने को कहना होगा, और हम ये करेंगे। ये थे सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि स्टेफान दे मिस्तूरा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कड़ा एतराज जताया है जिसमें कोर्ट ने $2 अरब की ईरानी संपत्ति जब्त कर बम हमलों में मारे गए अमरीकियों को देने को कहा था। इन हमलों का दोषी ईरान को माना जाता है। 1983 में बेरूत में अमरीकी मरीन अड्डे और 20 साल पहले सऊदी अरब में खोबार टावर पर हमले हुए थे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला चोरी की तरह है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। आज विदेश मंत्री जॉन कैरी ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने चीन की एंटी डोपिंग प्रयोगशाला की मान्यता 4 महीने के लिए निलंबित कर दी है। यह फैसला उसके अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा न उतरने पर किया गया। निलंबन के दौरान बीजिंग की नेशनल एंटी डोपिंग लेबोरेटरी वाडा संबंधी जाँच के काम नहीं कर पाएगी। अमरीकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर ने कहा है कि एजेंसी ने सैन बर्नार्डिनो के हमलावरों का एप्पल फोन हैक कराने के लिए $10 लाख चुकाए थे। लंदन में एक सुरक्षा बैठक के दौरान डायरेक्टर जेम्स कॉमे ने कहा कि वो सही सही रकम नहीं बता सकते जो हैकरों को अदा की गई। अमरीकी गायक प्रिंस की मिनेपोलिस में मृत्यु हो गई है। वो 57 साल के थे। उन्हें दुनिया भर में अपने समय का सबसे अहम संगीतकार माना जाता है। उन्होंने रॉक, फंक और साइकेडेलिया में फ्यूजन किया। उनकी 10 करोड़ से ज़्यादा एल्बम बिक चुकी हैं। प्रिंस की मौत पर दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें एक बेहतरीन बैंड लीडर और ज़बरदस्त परफॉर्मर बताया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूँ इकबाल अहमद। आज है अप्रैल की 22 तारीख और दिन शुक्रवार। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड से। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है और हरीश रावत की सरकार को बहाल कर दिया है। अब 29 अप्रैल को हरीश रावत को अपना बहुमत साबित करना होगा। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी, इन तमाम पहलुओं को समेटते हुए देहरादून से सुनिए शिव जोशी की ये रिपोर्ट।
नैनीताल हाईकोर्ट के बृहस्पतिवार के आदेश के तहत राज्य में अब 18 मार्च वाली स्थिति बहाल हो गई है, यानी राज्यपाल का 3 सप्ताह का शासन पूरा हुआ और अब सरकार की बागडोर एक बार फिर हरीश रावत के हाथों में आ जाएगी। कोर्ट का फैसला आने के बाद हरीश ने पहला काम मीडिया से बात करने का किया, फिर वो अपने विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने गए और इससे पहले वो एक जरूरी कानूनी दांव चलना नहीं भूले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट भी दाखिल कर दी। इस याचिका को दायर करने का अर्थ ये है कि केंद्र सरकार की हाईकोर्ट के फैसले पर किसी याचिका पर कोई भी निर्णय देने से पहले सुप्रीम कोर्ट रावत का पक्ष जरूर सुनेगा। इधर सरकार बहाल होते ही हरीश रावत का पहला काम यही होगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान अपनी सरकार के रद्द हुए फैसलों को वापस ले आए। इनमें सबसे खास राज्य की शराब नीति से जुड़ा फैसला था। देर रात कैबिनेट बैठक भी बुला ली गई। कोर्ट के आदेश के बाद बहाल मुख्यमंत्री हरीश रावत।
बजट के माध्यम से पूरा एक दिशा बनाई गई थी, वो सारी दिशाएं इस दौरान जो है गड़बड़ा गई, वो सब टूट गई, बिखर गई, उसको संवारने की चुनौतियां हैं। तो इसलिए हम आगे आने वाली चुनौतियों के रूप में भी इस बात को देखने।
बीजेपी के लिए हाईकोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार पर उसकी तीखी टिप्पणियां और आम लोगों में हरीश रावत सरकार के प्रति बन रहे सहानुभूति के माहौल से खतरे की घंटी बज गई है। उसे भी जनता के बीच ये सफाई तो देनी ही पड़ेगी कि उसका इरादा सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने का नहीं था। बीजेपी का कहना है कि वो अब जनता के बीच जाएगी और हरीश रावत सरकार की कारगुजारियों का पुरजोर पर्दाफाश करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट,
जो भी कमी रही होगी यहाँ के न्यायालय को समझाने में, केंद्र सरकार जरूर सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, क्योंकि न्याय की अंतिम श्रेणी और न्याय का सर्वोच्च मंदिर उच्चतम न्यायालय है, उससे ऊपर कोई नहीं है।
उधर सबसे ज्यादा मुश्किल में एक तरह से कांग्रेस के बागी विधायक हैं। यूं तो पार्टी ने उन्हें भी निकाला नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल तो लग ही गए हैं, क्योंकि इस दौरान इतनी तीखी नोक झोंक और कड़वाहट भरे बयानों का दौर चला है कि कांग्रेस में उनकी घर वापसी की राह कठिन ही लगती है, और अगर वापसी होती भी है तो उनका कद अब पहले जैसा तो नहीं रहेगा। उत्तराखंड के आम लोगों की नजरें भी हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी थीं। कुछ लोग राष्ट्रपति शासन को राज्य की नियति मान बैठे थे तो कुछ लोगों को ये भी लगता था कि ये सही नहीं हुआ। हाईकोर्ट के फैसले का आमतौर पर लोगों ने स्वागत ही किया।
देखो, हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका जो उन्होंने छीन लिया था और मिलना चाहिए था, लेकिन अब हाईकोर्ट का जो फैसला से हम खुश हैं। केंद्र सरकार को इसमें फटकार मिली है और हरीश रावत जी को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए।
29 अप्रैल को हरीश रावत को सदन में बहुमत साबित करना है। ताजा गणित के हिसाब से तो लगता है कि उन्हें इसमें मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि 9 बागी विधायकों को हटा दें तो सदन में बचते हैं 62 विधायक। कांग्रेस और बीजेपी के 27 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस को 1 UKD विधायक, 2 BSP और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। उसे बीजेपी के 1 निलंबित विधायक का भी समर्थन मिलेगा और 1 नामांकित सदस्य का भी। इस तरह उसकी संख्या 35 की हो जाती है। विधानसभा स्पीकर का भी वोट रख लें तो यह आंकड़ा 36 का हो जाता है। बहरहाल, शक्ति परीक्षण में उस दिन उपस्थित सदस्यों के संख्या बल के आधार पर ही बहुमत तय होगा, जिसमें कांग्रेस को फिलहाल कोई कठिनाई नजर नहीं आती। लेकिन अगर केंद्र और बागियों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है और कोर्ट उन्हें संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट का फैसला पलटता है तो इसी सूरत में हरीश रावत खेमे का गणित बिगड़ सकता है। शिव जोशी, BBC देहरादून।
और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त देहरादून से टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं शिव जोशी। शिव, वैसे तो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी है, आज वो किसी वक्त जाएगी, लेकिन कम से कम आज की सुबह देहरादून में क्या हो रहा है?
आज की सुबह जाहिर है कांग्रेसियों ने देर रात तक जश्न मनाया, आतिशबाजी, पटाखे और धूमधड़ाका, मिठाइयां बटना और इस तरह से खूब जश्न जुलूस पे रात भर कांग्रेसी रहे हैं। और न सिर्फ जश्न जुलूस हुआ, बल्कि कल रात जब अदालत का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री ने देर रात कैबिनेट की बैठक भी बुला ली थी, तो सारे जिनको मंत्री गण थे, चूंकि सरकार को रिइंस्टेट यानी बहाल कर दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से, लिहाजा सारी सुविधाएं और सारा जो शासन का काम है वो सरकार और हरीश रावत के हाथों में आ गया था। कल रात कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ फैसले भी लिए गए कैबिनेट की बैठक में, जो कि आज के अखबारों की में भी है। जो आज अखबार जिस तरह से पटे हुए हैं, बैनर हेडलाइंस हैं, 8 कॉलम हेडलाइंस हैं, सुर्खियां लगाई गई हैं और हाईकोर्ट के फैसले लेकर जिस तरह से बताया गया है कि बीजेपी और केंद्र सरकार से शब्द है, और जैसे कि आपने बताया कि प्रकाशित किया गया है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
जी, तो शिव वहाँ के अखबार क्या कह रहे हैं?
अखबारों में जो बेसिक बात है वो यही है कि केंद्र को हाईकोर्ट से झटका लगा है और जो सरकार को बहाली करने का आदेश दिया है, ये एक तरह से राज्यों के प्रति जो केंद्र की मंशा रहती है उसको लेकर अब उनके पास सचेत होने का समय आ गया है। इस तरह की भी कुछ खबरें प्रकाशित की गई हैं। और जो कुछ खास दिलचस्प बातें हैं वो मैं आपको जल्दी
जी बताएं। हाँ,
जैसे उसमें ये उन्होंने कहा है, अमर उजाला ने खबर लगाई है कि उसने हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट यानी प्रतिवाद याचिका दाखिल कर दी है केंद्र के पहले ही, तो यानी उनका वहाँ भी उन्होंने पहले ही अपना एक गांव कानून गांव चल दिया है। उसके अलावा ये भी कहा है कि पीडीएफ के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। दैनिक जागरण का ये कहना है, इसमें एक्सप्रेस ये लिखा कि एक तरफ लड्डू बन रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के दीवारों पर मुरझाई उन मालाएं लटकी हुई थी। और इसके अलावा कांग्रेस जो है वो अब पार्लियामेंट में भी बैटल लाइन यानी कि पार्लियामेंट में भी अब पूरे इंतजाम की तैयारी में जुट चुकी है। इसी तरह से जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उसका एक टिप्पणी लगाई है, और उस टिप्पणी में जो उसने बहुत ही मार्मिक बात को उसने कही थी कि क्या केंद्र को फटकार लगाते हुए कि क्या वो उस छोटे आदमी के भरोसे को कम करना चाहता है जो ऊपर बारिश को सहता हुआ सफेद कागज का पुचा लेकर वोट डालने जाता है। ये पीओआई के टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है। और एक खास बात दैनिक जागरण में ये है दिलचस्प कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों को हटाने की मांग की है, तो उनका कहना ये कि इनकी वजह से हम हारे हैं।
बहुत शुक्रिया शिव आपका देहरादून से तमाम अखबारों की समीक्षा का।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब बात अमेरिका और सऊदी अरब और सीरिया की। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि सीरिया के राजनीतिक समाधान के लिए सभी ताकतों को एक साथ आना चाहिए। ओबामा ने कल गल्फ अरब समिट में शामिल होने के बाद ये बातें कहीं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुने अजय शर्मा से।
अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर सीरिया में मौजूदा संघर्ष को खत्म करना है और शांति स्थापित करनी है तो इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। उनके मुताबिक इसके लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी होगा।
With respect to Syria, we had discussions about what options are available to us should the current situation.
सीरिया के मामले में मौजूदा युद्ध रोकने की स्थिति में हमने उन विकल्पों पर विचार किया है जो हमारे सामने हैं, मगर कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। मेरी लगातार ये सोच रही है कि हमें सीरिया के भीतर ही कोई राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए और इसमें सभी बाहरी और भीतरी ताकतें शामिल होनी चाहिए। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। ओबामा ने मौजूदा संघर्ष विराम के उल्लंघन की निंदा की और जोर दिया कि इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सीरिया के राष्ट्रपति असद की जवाबदेही तय करनी चाहिए। मैंने सोमवार को पुतिन से बात की थी और इसी बात की ओर इशारा किया था कि हम सीरिया में मौजूद विपक्ष पर लगातार संघर्ष विराम का पालन करने की मांग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए सीरियाई नेतृत्व की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। ओबामा ने ये भी कहा कि वॉशिंगटन और खाड़ी के अरब नेता इस्लामिक स्टेट से लड़ने और उन्हें हराने के लिए एकजुट हो चुके हैं।
तो इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए तमाम खाड़ी के देश एक हो चुके हैं और सीरिया के राजनीतिक समाधान के लिए सभी लोग आगे आए, ये कहना था ओबामा का। तो आखिर ओबामा के इस सऊदी दौरे और गल्फ समिट से अमेरिका को हासिल क्या हुआ, यही जानने के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, ओबामा के इस दौरे से क्या कुछ हासिल हुआ, क्या लगता है आपको?
देखिए, ओबामा की कोशिश थी ये दिखाने की कि खाड़ी के जो देश हैं उनके साथ जो पिछले दिनों में जिस तरह की बात हो रही है कि रिश्तों में काफी तनाव आ गया है, खासकर जब से ओबामा राष्ट्रपति बने हैं, तो वो उनकी दिखाने की कोशिश ये थी कि हालात वैसे नहीं है, ज्यादातर मामलों पर एक सकारात्मक सहयोग हो रहा है। खासतौर पर उन्होंने लीबिया का जिक्र किया, इराक का जिक्र, किया, सीरिया का जिक्र किया, यहाँ पे ये भी कहा कि यमन में जो खून खराबा हो रहा था उस पर रोक लगी है और आईसिस के खिलाफ एक आपसी सहयोग और ज्यादा बढ़ने पर सहमति बनी है। उन्होंने ये जरूर कहा कि ईरान को लेकर अभी भी मतभेद बरकरार है क्योंकि जो जीसीसी है, जो ग्रुप ऑफ जो गल्फ कंट्रीज की जो कॉपरेशन के लिए जो एक संगठन जो बना है वो उन्हीं के सहयोग से ईरान से बात हो, उन्होंने कहा कि उनकी मंजूरी के बाद ही ईरान से बात हुई और इन देशों को, लेकिन ये लगता है कि ईरान को जो इस समझौते की वजह से अहमियत मिली है उससे वो और बोल्ड होगा और एक तरह से जो उकसाने वाली कार्रवाई उनके अनुसार ईरान करता है वो जारी रखेगा। और उनका कहना था कि वो अपने साझेदार देशों से, उन्होंने कहा है इन सहयोगी देशों से कि ईरान को हर जो भी चीज समझौता हुआ है उसको जवाब दे, उसको ठहराया जाएगा, अगर उस पर वो कभी भी उस जो परमाणु समझौता है उसका अगर किसी तरह का उल्लंघन करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए। उन्होंने अपने बयान में ये बात भी कही कि अगर सचमुच में मध्य पूर्व एक स्थायी सुरक्षा चाहता है, की ख्वाहिश रखता है, तो उसे नौजवानों की, जो वहां के नौजवान है, उनकी उम्मीदों को पूरा करना होगा, उनकी सुननी होगी और मानवाधिकारों का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन यहाँ के जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि इस दौरे से जो पिछले कुछ सालों में जो एक आपसी एतबार में जो कमी आई है वो इस दौरे से बदल जाएगा, ऐसा होता हुआ उन नहीं देख रहे हैं और खासकर तब तक नहीं देख रहे हैं क्यों, जब तक कि कम से कम ओबामा व्हाइट हाउस में है और जो अभी माहौल और ज्यादा खराब हो रखा है क्योंकि 11 सितंबर के हमले के बाद कई अमेरिकी नागरिकों ने सऊदी अरब पर मुकदमा दायर करने की कोशिश की थी, तो वो अमेरिकी कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन वो उसके लिए एक कानून लाने की कोशिश हो रही है। ये जरूर है कि ओबामा ने कहा है कि वो इस पर वीटो लगाएंगे, लेकिन काफी लोकप्रिय हो रहा है वो कानून कांग्रेस में।
बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये थे वाशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने 11 बड़े अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और पनामा पेपर जो लीक हुए थे उनमें इनका भी नाम आया था। इस फैसले से सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका से बात की।
फौज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि उनका मोरल जो है वो ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये बड़ा सियासी अमल है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, ये फौज में होनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में की जा रही है वो बहुत सियासी अमल है। कह रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ, हम तो इतना अच्छा अदारा है कि हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स अगर ऐसे कसूर करें, ऐसे कोई करप्शन करें तो उनको कोई बख्शा नहीं जा रहा, तो जो सेना है, आर्मी है, वो किसी भी अदारे से, पाकिस्तान के किसी और इंस्टीट्यूशन से ज्यादा बेहतर है।
पाकिस्तान में सेना और सियासत का बड़ा एक तरह से चोली दामन का साथ रहा है, पहले भी कई तरह के मामले सामने आए हैं। क्या इस बार फौज के जिन अफसरों को हटाया गया है उसके पीछे किसी तरह की कोई सियासत, कुछ इस तरह की बू आती है?
जैसे मैंने पहले भी अर्ज करने की कोशिश की कि इसमें एक सियासी बिल्कुल एक पहलू है और वो सियासी पहलू ये है कि ये बताना कि एक तो ये कि फौज जो है वो सिविलियन अदारों से, सिविलियन पॉलिटिशियन जो है उनसे बेहतर है, और दूसरा ये कि ये अब जो आंच है समझे अगर वो तेज कर दी गई है, ये एक मैसेज है मियां नवाज शरीफ को, वजीर आजम को, कि जिनका नाम, जिनकी फैमिली का नाम जो है अभी पैनामा लीक्स में आया था, तो ये एक मैसेजिंग है कि देखिए अगर हमने, आप हम पे कहते हैं कि हमने अकाउंटेबिलिटी, हम इदारे की, सेना की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, तो हमने कर ली है, अब वक्त है कि आप भी अकाउंटेबिलिटी कीजिए।
क्या सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फौज की तरफ से मियां नवाज शरीफ पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है?
ये बिल्कुल दबाव बढ़ रहा है मियां नवाज शरीफ पे, ये आसान नहीं है अब उनके लिए ये कहना कि 18 महीने के बाद या 2018 में जब इलेक्शन होंगे तभी मैं जाऊंगा, ये ख्याल में कुछ ना कुछ इनको सद्देबाब इसका करना पड़ेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, और इससे वो हालात पैदा हो गए हैं जिससे मियां नवाज शरीफ आराम से जान नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक क्लियर पैगाम उनको गया है कि अगर फौज अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकती है तो कोई वजह नहीं है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने आप को पेश ना करें अकाउंटेबिलिटी के लिए, और उसका एक ही तरीका है कि वो इस्तीफा दें और एक ऐसे कमीशन को बनाए जो कि इंडिपेंडेंट हो और बिल्कुल गैर जानबदार हो और वो अकाउंटेबिलिटी कर सके।
तो पाकिस्तान से ये थी आयशा सिद्दीका।
एक तरफ आईपीएल मैचों के लिए पानी से तरबतर मैदान, दूसरी तरफ पानी के लिए तरसते गांव देहात।
कहाँ आवत है पानी, मरती है गोरु बचेरू मराई सबको भैया हरा कहे का।
सूखी जमीन, पथराई आंखों में बच्चों के बिखरते सपने।
हमारे सबसे बच्चे जाते होंगे स्कूल, बहुत कम जाते हैं और ज्यादा पानी में, और अब घर के काम दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें माप चलेगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ कुछ खाने के लिए है नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही है मदद।
पानी नहीं बचा, बचे रहे तजुर्बे।
पहले जो है तो लोग पानी का रख रखाव करते थे, बंधियां डालते थे, अब आज बरसाती पानी कोई रोक नहीं पा रहा,
और अब चारों तरफ सूखा ही सूखा।
आसों की साल में कई आदमी ने बलकट के लाने खेती लई, अब भाव ना कुछ तो सवेरे से चिल्लाता कही कि हम तो आत्महत्या कर ले।
सूखा भारत, शाम 7:30 बजे दिन भर में, पुनः प्रसारण अगली सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में, सूखा भारत।
तो बीबीसी हिंदी की विशेष पेशकश सूखा भारत। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के 7 जिले आते हैं। पिछले 3 सालों से सूखे की मार और पानी की कमी ने किसानों का जीना भले ही दूभर कर दिया हो और वो गांव छोड़ने पर मजबूर हो रहे हों, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इलाका वरदान साबित हो रहा है। पूरे बुंदेलखंड में खनन का कारोबार जोरों पर है और इससे जुड़े लोगों के लिए यहाँ की लाल मिट्टी वाली सूखी धरती सोना उगल रही है। सूखा भारत की 4वीं कड़ी में सुनिए समीरात्मज मिश्र की ये खास रिपोर्ट।
चित्रकूट की ओर से बुंदेलखंड के इलाके में दाखिल होते ही सूखे हैंडपंप, सूखे तालाब, सूखी नदियां, सूखे कुएं और सूखी धरती एक अजीब किस्म का सन्नाटा बुनती है, लेकिन इस सन्नाटे को जगह जगह क्रशर प्लांट के शोर चीरते हुए दिखते हैं। शोर ऐसा कि चलने वाले को उसी सन्नाटे में वापस पहुंचने की जल्दी होने लगती है। महोबा जिले में खनन का कारोबार कुछ ज्यादा ही फल फूल रहा है। यहाँ जगह जगह पुकलैंड और जेसीबी मशीनें खनन करती दिखेंगी और बड़े बड़े ट्रक इन ग्रेनाइट पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते मिलेंगे। कबरई गांव के पास इस खनन को देखने के लिए कुछ देर हम भी रुके, ज़्यादा देर रुकना यहाँ संभव भी नहीं था। काम करने वाले कुछ मजदूरों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें बात न करने की सख्त हिदायत दी गई थी। पूरे इलाके में स्थिति यह है कि पहाड़ों तक को खोद दिया गया है और कई जगह तो पहाड़ मैदान बन चुके हैं। पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कई तरह के मानक निर्धारित हैं। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि रिहायशी इलाकों से दूर खनन होना चाहिए और पहाड़ों में विस्फोट होना चाहिए, लेकिन इसका अनुपालन शायद ही कहीं हो रहा हो। महोबा जिले के गुगौरा गांव के निवासी एसएस परिहार सड़क के किनारे रहते हैं। उनसे बातचीत में इलाके के लोगों का दर्द साफ समझ में आता है।
इतना स्टोन हो गया यहाँ कि चारों तरफ उसके मारे लोग बीमार हैं, नाना तरह की बीमारियाँ पड़ रही हैं। अब यही रोड है, प्रधानमंत्री योजना का रोड है, इसमें 14 टन 15 टन लाद के निकलने का आर्डर है, 50 टन से नीचे कोई लाद के चलता ही नहीं ट्रक, और दिन भर में कम से कम 100-200 ट्रक निकलता है। सारे रोड ध्वस्त हो गए, धूल की धूल, धंधा इतना होता है कि दिन रात आदमी परेशान, नींद नहीं ले पाता।
बांदा, हमीरपुर जैसे कुछ ज़िलों में लोग खनन की दोहरी मार सह रहे हैं। एक और पहाड़ काटकर पत्थर निकाले जा रहे हैं और क्रशर प्लांट में उनसे गिट्टी बनाई जा रही है, दूसरी ओर नदियों के किनारे बालू खनन जोरों पर किया जा रहा है जिससे नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन उद्योग में बड़े और रसूखदार लोग शामिल हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन भी उन पर हाथ डालने से बचते हैं। हालांकि बांदा के जिलाधिकारी योगेश कुमार कहते हैं,
हाँ, ये अवैध खनन वाला बिंदु मेरे संज्ञान में, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ मेरे संज्ञान में लाया गया। मैंने यहाँ के जो SDMs और CEOs हैं, हमारे डिफरेंट क्षेत्र अधिकारी हैं, उन लोगों की संयुक्त बैठक की। उन लोगों को क्लियरली और कड़े निर्देश दिए कि आपके क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें नहीं आनी चाहिए।
जानकारों का कहना है कि बुंदेलखंड के जल संकट के लिए काफी हद तक खनन और वनों की कटाई भी जिम्मेदार है। बांदा चित्रकूट परिक्षेत्र के वन संरक्षक के एल मीणा बताते हैं।
पानी तो जबरदस्त है, आप जान रहे हैं पूरा प्रदेश को फिट करता है आपका बुंदेलखंड। भाई मोरंग ले लीजिए, बालू ले लीजिए, गट्टी ले लीजिए, सब यही जा रहा है। पहाड़ के पहाड़ खत्म हो रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ खत्म कर दिए, पहाड़ को खोद के पाताल बना दिया, ये हालत है। 5000 हेक्टेयर जंगल वन क्षेत्र है पूरे बुंदेलखंड में, आपका मात्र 5-6% है पूरे एरिया का, तो जबकि मानक के अनुसार 33% होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों को इसकी भयावहता का अंदाजा न हो, लेकिन इसके पीछे लगे लोगों की ताकत के चलते कोई हाथ नहीं लगाता। खनन की मार से बांदा जिले का भरतकूप इलाका भी जबरदस्त प्रभावित है। यहाँ से चित्रकूट की ओर चलने पर विंध्य पर्वत श्रेणियों में जगह जगह पत्थर खोदने के निशान मिलेंगे। सड़क के पास ही पहाड़ पर जब एक बड़ा कटान दिखा तो हम तस्वीर लेने के लिए रुके। पहाड़ के दाहिनी ओर एक स्कूल दिखा, स्कूल में खाकी पैंट और शर्ट पहने कुछ बच्चे भी दिखे। बच्चों से बातचीत के लोभ ने हमें उनके पास पहुंचाया। जूनियर हाई स्कूल यानी जिसको यहाँ पे मिडिल स्कूल कहते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ और मुझसे बात करने के लिए बड़े इच्छुक हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
माया यादव।
और किस क्लास में हो तुम?
सेवन।
अच्छा, सेवन्थ में कितने विषय पढ़ाए जाते हैं?
12।
कौन कौन से?
हिंदी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, पर्यावरण।
अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो?
अभी तो वो हिंदी पढ़े हैं।
हिंदी में क्या पढ़े हो?
कविता।
कविता सुनाओ। कोई कविता याद नहीं है?
पूरी नहीं।
तो कोई बात नहीं, आधी सुना दो, पूरी तो किसी को नहीं याद रहती है।
माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी।
शाबाश। अच्छा, अभी ये लड़की बता रही कि पर्यावरण भी आपके कोर्स में है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है तुम जानते हो? पर्यावरण क्या है?
पर्यावरण क्षेत्र के बारे में है, ऐसे कि पर्यावरण में क्षेत्र के बारे में आता है, पशु पक्षियों के बारे में आता है, उसके विज्ञान भी है उसमें थोड़ी थोड़ा।
पढ़ाड़ा याद है?
15 तक
का। 13 सुना।
13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38।
बच्चों को भले ही पर्यावरण पढ़ाया जा रहा हो और कुछ बच्चे पर्यावरण को समझ भी रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड की ये दुर्दशा चीख चीख कर कह रही है कि इस पर्यावरण के महत्व को समझने की बड़ों को भी जरूरत है।
गौ रहो ना पानी, आखिर अब का बाकी है, फटी दराले तलवन में और जल को स्तर सूख रहो, और बूंद बूंद के पीछू देखो, युद्ध सुनिश्चित बाकी है, पानी गौ रहो ना पानी।
समीर आत्मज मिश्र, BBC चित्रकूट।
भारत का एक बड़ा हिस्सा भयानक सूखे से ग्रस्त है, लेकिन बारिश के मौसम में भारत में ही हमने लोगों को भारी बारिश और बाढ़ की वजह से परेशान होते देखा है। एक मौसम में सूखा, दूसरे मौसम में बाढ़, इस असंतुलन की वजह क्या है? गलती आखिर कहाँ हो रही है? अगले कार्यक्रम विश्व भारती में हम इसकी पड़ताल करेंगे। और जाते जाते अब एक खबर हमारे पेज bbchindi.com से। क्या मलेशिया के स्कूलों में भी भूत है? और भूत का डर ऐसा है कि स्कूल को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। ऐसा पिछले हफ्ते शुरू हुआ जब कोटा भारू शहर के एक स्कूल में कुछ छात्रों और शिक्षकों ने अजीब सी ताकत का अनुभव किया। इस बारे में यदि आपको कुछ और जानना है तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां आपको ये खबर पूरे विस्तार से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाकर हरीश रावत की सरकार को बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के बने रहने को अपना समर्थन दिया है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि अगले हफ्ते शांति के लिए बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कड़ा एतराज जताया है जिसमें कोर्ट ने $2 अरब की ईरान की संपत्ति जब्त कर बम हमलों में मारे गए अमरीकियों को देने को कहा था। अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने चीन की एंटी डोपिंग प्रयोगशाला की मान्यता 4 महीने के लिए निलंबित कर दी है। अमरीकी गायक प्रिंस की मिनेपोलिस में मृत्यु हो गई है, वो 57 साल के थे। उन्हें दुनिया भर में अपने समय का सबसे अहम संगीतकार माना जाता है। BBC समाचार।
तो नमस्कार भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।